नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम्
देवी सरस्वती व्यासम्
ततो जयमुदीरे
ततो जय
नष्टप्रायेषु अवत्रेषु
नष्टपापेषु
नित्यं भागवत सेवया
नित्यं भागवत सेवया
भगवती उत्तम श्लोके
भगवती उत्तम श्लोके
भक्तिर्भवति नैश्चिति सङ्गतिवाचालं संलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमां मन्ये श्रीगुरुं दीनसारिणं श्रीपरमानन्दमाधवम् ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामय्यं ददाति सदन्तिकम् वन्देऽं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रदातं सहगणरघुनाथ नितं तं सजीवम् आश्रितं सावभूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यमेवम् श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखानितं च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते सप्तकन्दन गौरङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो मावदन्नाय कृष्णप्रेमाय कृष्णाय कृष्णचैतन्य नम्ने गौरवित नमः जय कृष्ण चैतन्य प्रभु निजानन्द गदाधर विवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 पशु पक्षियों को इस हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में नियोजित किया गया तो एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु इस वन मार्ग में जा रहे थे तो वो नदी में स्नान कर रहे थे। आरत इन्हें महाप्रभु करे नदी स्नान मक्ता हस्ती जुठा आयल खरीद के जल पान। तो एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु नदी में स्नान कर रहे थे तो उसी समय मत हस्तियों का एक झुंड आया, एक दल आया और ये लोग आकर पानी पीने के लिए आए थे। तो ये पानी पीने के लिए उसी नदी के तट पर आए जहां चैतन्य महाप्रभु स्नान कर रहे थे। प्रभु जल कृत्य करे आगे हस्ति आयला कृष्ण कहा बोली जल खेली मारिला। तो जब ये हाथीगण वहां पर उपस्थित हुए तो श्री चैतन्य महाप्रभु वहाँ जल में स्नान कर रहे थे और सामने देखा कि बहुत सारे हाथी आए हुए हैं, तो उन्होंने जल को अपने हाथ से उछालकर उनके ऊपर फेंक दिया और उनको ये आदेश दिया कि कृष्ण कहो। जिस प्रकार कल हम सुन रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु ने रास्ते में सोया हुआ बाघ को कृष्ण कहने के लिए प्रेरित किया था और श्रीमन महाप्रभु के चरण स्पर्श से ये बाघ कृष्ण प्रेम में इतना उन्मत्त हो गया था कि वो कृष्ण कहकर वहां पर नृत्य करने लगा चैतन्य महाप्रभु के सामने। तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अब वन में रहने योग्य जो पशु पक्षी हैं उनको अब कृष्ण प्रेम में उन्मत्त करा रहे हैं। तो इन हाथियों को श्री चैतन्य महाप्रभु ने जल के छींटे मारी जिससे कि ये लोग जल के स्पर्श होते ही ये लोग कृष्ण प्रेम में उन्मत्त हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिया कृष्ण नाम उच्चारण करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु का जो भाव था ये यद्यपि भगवान श्री कृष्ण थे किंतु ये महाभागवत भक्त का आचरण कर रहे थे और जो महाभागवत भक्त होता है वो पशु पक्षी मनुष्य कीट पतंग ब्राह्मण शूद्र में कोई अंतर नहीं देखता है। जिस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण कभी हस्ते नहीं सुनी चाहिए सपा के पंडिता दर्शना। जो वास्तविक पंडित है जो विद्वान है और भगवान का भक्त है परम शुद्ध भक्त है तो उसके लिए ये ब्राह्मण हाथी कुत्ता और सपा अर्थात चंडाल इनमें कोई अंतर नहीं है, वो सब में भगवान कृष्ण को ही देखता है। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति सर्वत्र है तार इष्ट देव स्फूर्ति। तो भगवान का जो शुद्ध भक्त महाभागवत भक्त है वो हर प्राणी में अपने आराध्य भगवान कृष्ण को ही देखता है, इसलिए वो प्राणियों में कोई अंतर नहीं करता है, चाहे वो पशु हो मनुष्य हो या मनुष्य में ब्राह्मण हो या चंडाल वो सब में भगवान कृष्ण का वास ही मानता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब इन हाथियों को देखा तो उसमें भी वो भगवान कृष्ण को ही देख रहे थे और उन्होंने कहा कि कृष्ण उच्चारण करो क्योंकि भगवान कृष्ण सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं और वो हृदय से प्रेरणा प्रदान करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में हर प्राणी के हृदय में रहते हैं, जिस प्रकार हर प्राणी के हृदय में आत्मा और परमात्मा ये दोनों निवास करते हैं। इस शरीर में आत्मा और परमात्मा दोनों निवास करते हैं और एक उदाहरण दिया गया है उपनिषदों में कि जिस प्रकार एक वृक्ष में दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक पक्षी वृक्ष का फल खाता है और दूसरा पक्षी केवल देखता है कि ये पक्षी क्या कर रहा है, तो उसी प्रकार हमारे हृदय में आत्मा और परमात्मा की स्थिति है। ये आत्मा शरीर में आवत होकर ये कर्म फल रूपी वृक्ष का फल खा रहा है, संसार रूपी वृक्ष का ये जो कर्म फल है उसको खा रहा है भक्षण कर रहा है और इसलिए सुख दुख भोग कर रहा है और परमात्मा केवल देख रहे हैं कि आत्मा क्या कर रही है, इस शरीर के माध्यम से आत्मा किस प्रकार कर्म में प्रवृत्त होता है और कर्म का फल भोग करता है। इसलिए जीव के कर्म के साक्षी हैं परमात्मा भगवान और जब तक वो अनुमति प्रदान नहीं करते हैं तब तक जीव कोई कर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकता। उपदेष्टा अनुमंता ये परमात्मा का कार्य है, ये दो कार्य है उपदेष्टा और अनुमंता। जब व्यक्ति कभी कोई पाप कर्म करने के लिए सोचता है तो थोड़े समय के लिए उसके मन में उसका विवेक उत्पन्न हो जाता है और उसके मन में आता है कि नहीं, ये काम ठीक नहीं, मैं जो करना चाहता हूँ ये करने जा रहा हूँ। तो वही परमात्मा बोल रहे हैं, हमें उपदेश दे रहे हैं कि ये कार्य नहीं करने के लिए, किंतु भोग की प्रवृत्ति प्रबल होने के कारण हम परमात्मा के इन उपदेशों को श्रवण नहीं करते, उसका अनादर कर देते हैं। उसके पश्चात परमात्मा हमें अनुमति प्रदान करते हैं वो कार्य करने के लिए, क्योंकि जब तक वो अनुमति प्रदान नहीं करेंगे हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। यहाँ तक कि भगवान की अनुमति के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। पिछले भगवान जो परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं, ये अनुमति प्रदान करते हैं, इसलिए अनुमंता है, और उपदेश प्रदान करते हैं, पहले पाप कर्म से निवृत्त होने के लिए सत उपदेश प्रदान करते हैं, किंतु हम सुनते नहीं उनके उपदेश। उसके पश्चात वो अनुमति प्रदान करते हैं, इसलिए करते हैं कि ठीक है तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो तो इसके फल तुम ही भोग करोगे, मैं अनुमति देता हूँ करो, ठीक है। इसलिए भगवान को हम कभी दोषी नहीं बता सकते। कभी कभी लोग इस भौतिक संसार में जब कष्ट हो करते हैं या दुख में होते हैं तो तुरंत भगवान को दोष दे देते हैं कि भगवान ने ऐसा किया हमारे साथ, भगवान नहीं कर रहे हैं, हम अपने कर्म का फल ही भोग कर रहे हैं। भगवान ने हमें उपदेश दिया था जब हम पाप कर्म किए थे किसी जन्म में, हम सुने नहीं थे उनके आदेश को, उपदेशों को, इसलिए उसका कर्म फल हमें ही भोग करना पड़ेगा, क्योंकि हम ही अपने कर्म के लिए उत्तरदायी। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण का दर्शन कर रहे थे इन हाथियों, और उनको कहा कृष्ण उच्चारण करने के लिए, तो उनके अंतर में जो कृष्ण है उस चैतन्य महाप्रभु कृष्ण उनके सामने खड़े हैं, वो प्रेरित कर रहे हैं हाथियों को कृष्ण नाम उच्चारण करने के लिए, और चैतन्य महाप्रभु का स्पर्श वो जल की छींटे के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। तो उसको प्राप्त करके सही जला बिंदु कणा लागे दार गाय सही कृष्ण कृष्ण कहे प्रेमे नाचे गा। तो चैतन्य महाप्रभु ये कोई अंतर नहीं कर रहे थे कि ये हाथी है, ये लोग कैसे कृष्ण नाम का उच्चारण करेंगे या कृष्ण प्रेम को प्राप्त होंगे, ये नहीं देख रहे थे। वो तो हर प्राणी को समान रूप से देख रहे थे और हर प्राणी को कृष्ण प्रेम में उन्मत्त कराना चाह रहे थे। यही चैतन्य महाप्रभु की कृपा, विशेष कृपा, इसलिए उनको महावदन्य अवतार कहा गया। तो एक दिन जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे तो हरिदास ठाकुर जो ब्रह्मा जी के अवतार थे, तो ये आए थे चैतन्य लीला में अंश ग्रहण करने के लिए ब्रह्मा जी, इसलिए उनको ब्रह्म हरिदास कहा जाता है। तो ये हरिदास ठाकुर को नामाचार्य भी कहा जाता है। ये नित्य प्रति 3 लाख ये भगवान का नाम का कीर्तन करते थे, और 3 लाख नाम कीर्तन करने के लिए उनको 22-23 घंटे लगते थे। तो 1-2 घंटे में उनका खाना पीना सोना सब कुछ होता, बाकी समय केवल भगवान का नाम कीर्तन करते थे, इसलिए इनको नामाचार्य कहा गया। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन उनसे प्रश्न पूछा कि हरिदास, इस नाम कीर्तन के माध्यम से मनुष्य का तो उद्धार हो जाएगा, क्योंकि जो मनुष्य जो व्यक्ति भगवान का ये दिव्य नाम कीर्तन करेगा उसका उद्धार निश्चित है, ये हरे कृष्ण महामंत्र का जो भी कीर्तन करेगा वो उद्धार हो सकता है, किंतु पशु पक्षियों का क्या होगा, जो दूसरे मनुष्यतर प्राणी है कि उन लोगों का उद्धार कैसे होगा। तो इसलिए हरिदास ठाकुर ने कहा कि जब इस हरे कृष्ण नामांतर का उच्चारण उच्च स्वर में किया जाता है और उस हरे कृष्ण महामंत्र को दूसरे प्राणी सुनते हैं, पशु पक्षी आदि, तो वे लोग भी उद्धार हो जाते हैं। हो सकता है कि वो उच्चारण नहीं कर सके, किंतु श्रवण मात्र से भी वो उद्धार हो जाएंगे। पशु पक्षी आदि इतर प्राणी, यहाँ तक कि वृक्ष लता आदि स्थावर जंगम, जितने भी प्राणी हैं, केवल भगवान के नाम कीर्तन के श्रवण से वो उद्धार हो सकता है। इसलिए उच्च स्वर से ये नाम कीर्तन करने के लिए हरिदास ठाकुर ने कहा था। इसलिए भक्त लोग उच्च स्वर में नाम कीर्तन करते हैं, जब अपना जप करते हैं तो थोड़े नीच स्वर में करते हैं, किंतु जब कीर्तन करते हैं उच्च स्वर में कीर्तन करते हैं, जिससे कि जगत का कल्याण, जगत का लाभ। जो व्यक्ति इस नाम कीर्तन का श्रवण करेगा वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त हो सकता है, वो शुद्ध हो सकता है। इसलिए जो सुनने वाला चाहे वो उच्चारण नहीं करता हो, फिर भी उसको लाभ होता है। तो यही चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है जीवों पर, जीवों को उद्धार करने के लिए, विशेष रूप से इस कलियुग। तो यहाँ पर जब चैतन्य महाप्रभु यह हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने के लिए, कृष्ण कहने के लिए हाथियों को प्रेरित करते हैं, तो जिस हाथी के शरीर में चैतन्य महाप्रभु की जल की छींटे लगी तो कृष्ण प्रेम में उन्मत्त हो गया और कृष्ण कृष्ण कहकर नाचने लगा। तो सही कृष्ण कृष्ण कहे प्रेमे नाचेगा, केह घूमे पड़े केह करे चित कर, देखी भट्टाचार्य मने है चमत्कार। तो ये जितने हाथी सब आए थे वहां पर, ये सारे हाथी कृष्ण कृष्ण कहकर वहां नृत्य करने लगे और इस प्रकार भावावेश में, कृष्ण प्रेम में आविष्ट होकर कोई हाथी नृत्य करते करते नीचे गिर गया, नीचे पड़ गया, और कोई चित्कार करने लगा, सिंघाने लगा। तो इस प्रकार कृष्ण प्रेम में उनके शरीर में विकार परिलक्षित होने लगा। कृष्ण प्रेम में जो सात्विक विकार परिलक्षित होता है मनुष्य के शरीर में, ये पशुओं के शरीर में भी ऐसा विकार परिलक्षित होने लगा। चैतन्य महाप्रभु की कृपा पथे जाते करे प्रभु उच्च संकीर्तन, मधुर कंठ ध्वनि सुनी ऐसे मृगी। तो इस प्रकार हाथियों का उद्धार करके चैतन्य महाप्रभु जंगल मार्ग में फिर आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तो जब जाते हैं, जा रहे थे चैतन्य महाप्रभु, तो अपने दोनों हाथों को ऊपर करते हुए ये हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे उच्च स्वर में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार जब चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे हरे कृष्ण महामंत्र का, तो उनका स्वर बहुत मधुर था, क्योंकि वो स्वयं भगवान थे। तो भगवान के समान मधुर स्वर और किसका हो सकता है। बस तो इस संसार में जितना सौंदर्य है, जितना मधुर, जितनी मधुर ध्वनि है, ये सब भगवान कृष्ण से ही आया है। वे सब भगवान कृष्ण सबके मूल है। जो संगीत विद्या है ये भगवान कृष्ण से उत्पन्न है। जो आयुर्वेद है भगवान कृष्ण से उत्पन्न है। ये सब कुछ भगवान कृष्ण से ही आया है। इसलिए भगवान कृष्ण की ध्वनि, उनका रूप अत्यंत सुंदर है। इसलिए भगवान को असमर्थ कहा गया है, असम ऊर्ध असमर्थ, कि भगवान के समान सुंदर कोई नहीं है, या उनसे बढ़कर सुंदर कोई नहीं है। तो भगवान के जितने ऐश्वर्य हैं, छह ऐश्वर्य हैं, इन छह ऐश्वर्य में कोई भगवान का समकक्ष नहीं हो सकता या उनसे बढ़कर नहीं हो सकता। इसलिए भगवान कंठ ध्वनि भी बहुत मधुर है, बहुत सुंदर कंठ से मतलब भगवान कृष्ण गाते हैं, तो बहुत सुंदर मधुर ध्वनि से गाते हैं। उनके समान कोई गा नहीं, या उनसे बढ़कर कोई सुंदर स्वर में गा नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु जो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे सुंदर मधुर स्वर में, तो मधुर कंठ ध्वनि सुनी ऐसे मृगी गा। तो उनके मधुर कंठस्वर सुनकर जंगल में जो मृगी थे हिरनिया थी यीशु आकर चैतन्य महाप्रभु के पास चले आए मधुर ध्वनि सुनकर। क्योंकि ऐसे भी हिरन हिरनियों का आकर्षण होता है ध्वनि के प्रति, इसलिए कभी कभी जो शिकारी या बहेलिया होते हैं वो मृग का शिकार करना चाहते हैं तो मधुर ध्वनि करते हैं, मधुर स्वर से गाते हैं या कुछ स्वर ऐसा ध्वनि करते हैं जिससे मृग मृगी आकृष्ट होकर आ जाते हैं पास। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के मधुर कंठ ध्वनि सुनकर बहुत सारे मृगीगण वहां पर आकर एकत्रित हो गए चैतन्य महाप्रभु के पास। दाहिने बामे ध्वनि सुने जाए प्रभु संगे, तो ये मृगीगण चैतन्य महाप्रभु के पास आकर बाएं तरफ दाहिने तरफ दोनों तरफ हो लिए और एक साथ चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ चलने लगे। चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हुए जा रहे हैं तो ये मृगियां ये हिरनिया दोनों साथ दोनों तरफ उनके साथ चल रहे। प्रभु तार अंगम उसे शोका पड़े रंग, तब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि ये मृगीगण उनके साथ चल रहे हैं आकृष्ट होकर उनकी ध्वनि से, तो चैतन्य महाप्रभु उनके प्रति उन्होंने कृपा दृष्टि डाली और इस प्रकार उनके शरीर को वो संवारने लगे। चैतन्य महाप्रभु इन मृगियों के शरीर को शरीर संवारने लगे और उनको थपथपाने लगे प्रेम रंग। तो इस प्रकार जब मृगीगण चैतन्य महाप्रभु का हस्त स्पर्श पाकर कृष्ण प्रेम में उन्मत्त हो रहे थे, तो इस प्रकार यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक श्रीमद् भागवत के श्लोक का उद्धार करते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में लीला कर रहे थे तो भगवान कृष्ण भी अद्भुत वेश रचना करके जब वृंदावन के जंगल में गोचारण करने के लिए जाते थे तो उस समय भी ऐसे मृगीगण आकर भगवान कृष्ण के पास पास चलते भगवान कृष्ण के अंग स्पर्श करने के लिए व्याकुल होते थे। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उसी श्रीमद् भागवत के श्लोक का उद्धार किया है जिस श्लोक को गोपियों ने गाया है, ये गोपियों की वाणी है, गोपियां कह रहे हैं भगवान कृष्ण वो अद्भुत वेश रचना करते हुए वंशी भावन करते हुए जंगल में वृंदावन के जंगल में प्रवेश कर रहे हैं और मृगीगण उनके आसपास आकर एकत्रित हो रहे हैं और भगवान के अंग स्पर्श प्राप्त कर रहे हैं, तो गोपियां उनके सौभाग्य की प्रशंसा कर रही है। तो कहती है धन्यात्म मूढ़ मतयोगी हरिण्येता या नंद नंदन उपात विचित्र वेश आखन्न वेणुरनितं सह कृष्ण सारा पूजं गधुर विरचितं प्रणयावलोक। तो गोपियां कहती हैं कि धन्यात्म मूढ़ मतयोगी हरिण्येता ये हिरनिया ये धन्य है, ये बड़े बड़े सौभाग्यशालिनी है ये हिरनिया। और क्यों उनके सौभाग्य की प्रशंसा कर रही है गोपियां, कह रहे हैं कि मां मूढ़ मतयो भी यद्यपि ये हिरनिया मूढ़ मति है अर्थात इनकी उतनी बुद्धि नहीं है, ये बुद्धिमती नहीं है, ये मूर्ख है क्योंकि ये पशु जाति है, पशु जाति अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करती है। जिस प्रकार मनुष्य में बुद्धि होती है मनुष्य विचार कर सकता है अच्छा बुरा, ये पशु पक्षी विचार नहीं कर सकते अच्छा बुरा, वो अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं, इसलिए उनको जड़ मति कहा गया। और गोपियां भी ऐसे हिरनियों को जड़ मति कह रही है, मूढ़ मति कह रही है। तो कह रहे हैं कि ये मूढ़ मति होने पर भी ये बहुत भाग्यवान भाग्यशाली है, ये हिरनिया बहुत भाग्यशाली है, इनका बहुत बड़ा सौभाग्य तो यदि ये बुद्धिमान होती तो ये सौभाग्य का होना ये समझा जा सकता है, किंतु मूढ़मति होने पर भी ये हिरनिया इतने सौभाग्यवती हैं, तो इसका कारण क्या है? या नंद नंदन उपात विचित्र वेश, ये नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण जब विचित्र वेश धारण करते हुए वृंदावन के जंगल में प्रवेश कर रहे हैं, तो इनके वेश से आकृष्ट होकर, इनके रूप से आकृष्ट होकर ये हिरनिया उनके पास चली आई। भगवान श्री कृष्ण इतने सुंदर थे, आकर्षक थे, इसलिए उनका नाम कृष्ण है। कृष्ण का अर्थ होता है सर्व आकर्षक। तो सारे संसार के जीवों को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। तो कृष्ण शब्द जो है ये कृष और न से बना है। तो कृष का अर्थ है आकर्षित करना। तो सारे जीवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और आकर्षित करके क्या करते हैं भगवान श्री कृष्ण? अर्थात आनंद प्रदान करते हैं। तो जो भी व्यक्ति एक बार भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाता है, तो वह अपार आनंद का अनुभव करता है, उसके सारे दुख दूरीभूत हो जाते हैं। यही भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण का फल है। तो गोपियां इन हिरणियों के सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ये हिरनिया धन्य है, क्योंकि ये भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित हुई है। और उसके साथ साथ आकर्ण वेम रणितम सह कृष्ण सारा, और भगवान श्री कृष्ण जब वंशी वादन कर रहे हैं, तो इनकी वंशी ध्वनि श्रवण करके ये हिरनिया अपने स्वामी कृष्ण सार मृगों के साथ कृष्ण के पास चली आई है। तो ये हिरनिया अकेली नहीं आई है, अपने स्वामी कृष्ण सार मृग के साथ आई है कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो। तो इसलिए ये धन्य है। तो ऐसी क्या बात हुई कि गोपियां इन हिरनियों को धन्य मान रही है कि कृष्ण के पास आकर्षित होकर अपने स्वामियों के साथ ही चली आई है? क्योंकि गोपियां अपनी स्थिति के बारे में विचार कर रही है। गोपियां सोच रही है कि हमें यह सौभाग्य प्राप्त नहीं है, हिरनियों को जो सौभाग्य आज प्राप्त हुआ है, हमें यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पा रहा। हम यद्यपि मनुष्य जन्म हमें प्राप्त हुआ है और हम इन हिरनियों से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि है, हम अच्छा बुरा का विचार कर सकते हैं, फिर भी हमें इस प्रकार का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है जो सौभाग्य हिरनियों को प्राप्त हुआ है। हिरनियां तो भगवान कृष्ण के वेश से आकृष्ट होकर, उनके रूप से आकृष्ट होकर और उनके वंशवादन की ध्वनि से आकृष्ट होकर उनके पास अपने स्वामियों के साथ चली आई, किंतु हम ऐसा नहीं कर सकते। यद्यपि हम भगवान कृष्ण के रूप से आकर्षित हैं, फिर भी हम कृष्ण के पास नहीं जा सकते, क्योंकि ये गोपियों को भय था अपने परिवार का, स्वामियों का, सास नंदों का ये भय था, इसलिए ये अपने दुर्भाग्य, इसको अपना दुर्भाग्य मान रही है कि ये हिरनिया बिना कोई हिचक के ये कृष्ण के पास चली आती है, किंतु हम नहीं जा सकते कृष्ण के पास। यद्यपि हम कृष्ण के प्रति आकृष्ट हैं, फिर भी कृष्ण के पास नहीं जा सकते, इसलिए हमारा ये दुर्भाग्य और ये हिरनिया सौभाग्यशाली है। और पुनः कह रहे हैं कि ये हिरनिया अपने स्वामियों के साथ कृष्ण के प्रति आकृष्ट होकर आई है कृष्ण के पास, किंतु हमारे स्वामी लोग तो हमें बाधा प्रदान करते हैं कृष्ण के पास जाने के लिए, इसलिए हम उतने सौभाग्यशाली नहीं। अपने दुर्भाग्य की प्रशंसा, दुर्भाग्य की बात कह रही है। इसके साथ जब ये हिरणों की प्रशंसा कर रही है गोपियां, तो उसके साथ अपने दुर्भाग्य की बात भी स्मरण कर रही है। पूजन गधुर विरत सन प्रणय अवलोक, और कह रहे हैं कि ये हिरणियां अपने स्वामी कृष्णचार मृगों के साथ ये कृष्ण की ओर इस तरह प्रेमपूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं ये लोग, और इस प्रेमपूर्ण दृष्टि से कृष्ण की ओर देखते हुए कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। किंतु हमें भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं, हम भी अच्छी तरह भगवान कृष्ण को अपने प्रेमपूर्ण दृष्टि से देख नहीं सकते।